आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मतवृंद, आज से 4 दिन तक महाराज ध्रुव के चरित्र के ऊपर चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम में ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण जब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए, भक्त के रूप में भगवान अवतरित होते हैं कलयुग में भक्ति की शिक्षा देने के लिए, तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब नीलाचल में अवस्थान कर रहे थे तो उस समय ये ध्रुव और प्रहलाद के संबंध में वो सदा सर्वदा श्रवण करने के लिए उत्सुक रहते थे। यद्यपि ध्रुव और प्रहलाद के चरित्र के संबंध में हम कई बार सुन चुके हैं और जानते भी हैं, फिर भी ये ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज के चरित्र भक्ति मार्ग में भक्तों को उत्साह प्रदान करने में समर्थ है। विशेष रूप से ध्रुव का जो चरित्र है ये किसी भी साधक को भक्ति मार्ग में दृढ़ता प्रदान करने के लिए समर्थ है, क्योंकि ध्रुव महाराज जो कि बाल्यावस्था में 5 वर्ष के बालक की अवस्था में जो अपमानित हुए थे और एक भौतिक इच्छा को लेकर भगवान की उपासना की थी, और शास्त्रों में बताया गया है कि अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषं परम, कि व्यक्ति की कोई भौतिक कामना हो या नहीं हो, अकाम सर्व काम, तो कोई कामना नहीं हो या हर तरह की कामनाएं, फिर भी उसको भगवान कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार थे, यदि कोई मुक्ति की भी कामना करता है, भौतिक कामना करता है या कोई भी कामना नहीं है, हर स्थिति में तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषं परम, ये परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण का तीव्र भक्ति योग के साथ उनकी उपासना करनी चाहिए, जिससे कि व्यक्ति की भौतिक कामनाएं भी पूर्ण हो जाती है और उसके साथ साथ व्यक्ति शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त कर सकता है। ये दोनों तरह का लाभ उसको प्राप्त होता है, भौतिक लाभ और आध्यात्मिक लाभ। ये भगवान कृष्ण की पूजा करने से या भक्ति करने से ऐसा संभव है, जबकि दूसरे देवी देवताओं की पूजा करने से ऐसा संभव नहीं होता है, क्योंकि देवी देवताओं का जो वरदान होता है वो अस्थाई वरदान होता है, और देवी देवताएं भी भगवान कृष्ण से शक्ति को प्राप्त करते हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो आदि पुरुष हैं, यहां तक कि सारे अवतारों के स्रोत हैं, उनकी उपासना या भक्ति जो व्यक्ति करता है उसके उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो ध्रुव महाराज के चरित्र से हम इसके संबंध में जानने के लिए अवसर प्राप्त होगा कि किस प्रकार ध्रुव महाराज भगवान की भक्ति करने के लिए एक भौतिक कामना लेकर गए थे, और उस कामनाओं की पूर्ति के साथ साथ कैसे वो भगवान के धाम को भी प्राप्त हो गए। तो ये प्रसंग चैतन्य महाप्रभु बार बार श्रवण करते थे और इसी से स्वयं आनंद प्राप्त करते थे और भक्त गणों को यही शिक्षा देते थे कि बार बार जितना जानने पर भी ये ध्रुव और प्रह्लाद के चरित्र को बार बार सुनना चाहिए, जिससे कि भक्ति मार्ग में हम प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं, दृढ़ संकल्प को प्राप्त कर सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में जो वर्णन आता है तो मैत्रेय मुनि वस्तुतः विदुर के समक्ष ये स्वयं मनु के वंश का वर्णन करते हैं। तो स्वयं मनु के दो पुत्र थे, प्रियव्रत उत्तान पादो सतरूपा पतेह सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षयाम जगत स्थितो। तो स्वयं मनु थे ब्रह्मा के पुत्र और स्वयं मनु के पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत ज्येष्ठ थे, उत्तानपाद कनिष्ठ धाता थे, किंतु मैत्रेय मुनि तुरंत कनिष्ठ भ्राता उत्तानपाद के वंश के बारे में वर्णन करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। इसका कारण है कि मैत्रेय मुनि इससे पहले ये अधर्म के बारे में वर्णन कर चुके हैं, अब धर्म के बारे में वर्णन करना चाह रहे हैं और किस प्रकार महाराज उत्तानपाद के वंश में एक महान भक्त प्रकट हुए ध्रुव महाराज, उनके संबंध में वर्णन करने के लिए मैत्रेय मुनि व्याकुल थे, क्योंकि ध्रुव महाराज का चरित्र जो है ये सारे धर्मों से ऊपर जो परम धर्म है, ये परम धर्म का व्याख्यान ध्रुव महाराज के चरित्र से प्राप्त होता है। इसलिए मैत्रेय मुनि ध्रुव महाराज के चरित्र का वर्णन करने के लिए व्याकुल हो रहे थे, तो तुरंत वो उत्तानपाद के वंश के वर्णन के लिए चले गए, प्रियव्रत को छोड़ दिया पहले जबकि वो ज्येष्ठ भ्राता था। तो कहते हैं वासुदेवस्य कलया रक्षयन् जगतः स्थितो। तो ये भगवान वासुदेव कृष्ण की कला या अंश में जन्म हुए थे, तो ये स्वयं मनु जो ब्रह्मा के वंश में आविर्भूत हुए थे और ब्रह्मा भगवान के अंश कहे जाते हैं, यद्यपि ब्रह्मा जीव तत्व है फिर भी भगवान से शक्ति को प्राप्त हुए हैं, आवेश को प्राप्त हुए हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण किसी जीव के माध्यम से यदि कोई कार्य करना चाहते हैं तो उस जीव में एक विशेष शक्ति को भर देते हैं, जिससे वो व्यक्ति असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। तो ब्रह्मा जी भी भगवान से इस प्रकार कृपा को प्राप्त हुए थे और कभी कभी यदि ब्रह्म पद को प्राप्त होने के लिए कोई जीव उपलब्ध नहीं होता है संसार में, तो स्वयं भगवान ब्रह्मा बनकर ब्रह्मा का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार जो ब्रह्मा जी भगवान से कृपा प्राप्त हुए थे, ज्ञान को प्राप्त हुए थे, उनके वंश में स्वयंभू मनु हुए और स्वयंभू मनु के दो पुत्र हुए, सतरूपा उनकी पत्नी शत्रुपा के गर्भ से दो पुत्र उत्पन्न हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। और उत्तानपाद के वंश में किस प्रकार ध्रुव महाराज उत्पन्न हुए इसका वर्णन कर रहे हैं मैत्रेय मुनि। तो कहते हैं कि एक बार महाराज उत्तानपाद जिनकी दो पत्नियां थी, एक का नाम था सुरुचि और दूसरे का नाम सुनीति। सुनीति ये ज्येष्ठ रानी थी, सुरुचि कनिष्ठा, किंतु सुरुचि महाराज उत्तानपाद का प्रिय थी। महाराज उत्तानपाद महारानी सुनीति को इतना प्रेम भाव से नहीं देखते थे। और इन दोनों रानियों के दो पुत्र थे, एक तो सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव महाराज और सुरुचि के पुत्र उत्तम। उत्तम कनिष्ठ भ्राता, ध्रुव महाराज ज्येष्ठ भ्राता था, किंतु दो रानियों से दोनों का जन्म हुआ था। तो एक बार महाराज उत्तानपाद बैठे हुए थे और उनके पास सुरुचि भी थी जो उनकी प्रिय रानी थी। और सुरुचि के पुत्र उत्तम को महाराज उत्तानपाद गोद में लेकर लाल प्यार कर रहे थे। तो इसी समय ध्रुव जो 5 वर्ष के बालक थे और सुनीति के पुत्र थे, महारानी सुनीति के पुत्र ध्रुव महाराज उसी स्थान पर पहुंचे जहां महाराज उत्तानपाद बैठे हुए थे और उत्तम को गोद में लिए हुए बैठे हुए थे। तो ये स्वाभाविक है बच्चों में इस प्रकार इच्छाएं उत्पन्न होती हैं कि यदि भ्राता बैठा है पिताजी की गोद में तो वो भी बैठना चाहेगा। तो बच्चों में इस प्रकार का मनोभाव होता है, प्रतियोगिता मूलक मनोभाव, वो कर रहा है हम भी करें। तो जब ध्रुव महाराज महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठने के लिए गए तो बैठने जा रहे हैं किंतु महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव महाराज का स्वागत नहीं किया, गोद में लेने के लिए कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। इसका कारण था कि महाराज उत्तानपाद सोच रहे थे कि यदि मैं ध्रुव को अपनी गोद में लेता हूं, यद्यपि महाराज उत्तानपाद के लिए दोनों पुत्र प्रिय थे, किंतु महाराज उत्तानपाद सोच रहे थे कि यदि मैं ध्रुव को अपनी गोद में लेता हूं तो अब यहां सुरुचि बैठी है और वो क्रोधित हो जाएगी। तो सुरुचि मेरी प्रिय रानी है और महाराज उत्तानपाद सुरुचि को क्रोधित करना नहीं चाहते थे, उनको प्रसन्न करना चाहते थे। इसलिए जब ध्रुव महाराज उनकी गोद में उठने के लिए प्रयास कर रहे थे तो महाराज उत्तानपाद ने कोई व्याकुलता या उत्सुकता प्रकट नहीं की ध्रुव महाराज को गोद में लेने के लिए। तो रानी सुनीति महाराज उत्तानपाद के भाव को समझ गई कि महाराज उत्तानपाद क्यों अपने पुत्र ज्येष्ठ पुत्र को अपनी गोद में नहीं ले रहे, ये समझकर सुरुचि बोलने लगी ध्रुव से, क्योंकि वो अपनी सपत्नी का पुत्र था ध्रुव, इसलिए सुरुचि के मन में उसके प्रति ईर्ष्या की भावना थी। यद्यपि ध्रुव के मन में अपनी माता और सुरुचि जो विमाता है, इन दोनों में वो कोई भेद नहीं देख रहे थे ध्रुव महाराज, और बच्चों में ये ज्ञान भी नहीं होता है कि विमाता और अपनी माता में क्या अंतर होता है, क्योंकि ध्रुव महाराज एक अबोध बालक की भांति वो पिता की गोद में बैठने जा रहे थे और उनको पता नहीं था कि उनकी विमाता इससे क्रोधित हो जाएगी, किंतु सुरुचि क्रोधित हो गई और उनका साहस और गर्व बढ़ गया जब सुरुचि ने देखा कि महाराज उत्तानपाद ध्रुव को अपनी गोद में लेने के लिए कोई उत्सुकता प्रकट नहीं कर रहे। तो उस समय सुरुचि ध्रुव महाराज से कहने लगी, तो सुरुचि कह रही है न बस नृपते रधिष्णम भवान आरुरो अर्ज, हे वत्स हे पुत्र, तुम्हें नृपति अर्थात राजा महाराज उत्तानपाद के आसन में बैठने के लिए तुम योग्य नहीं हो। इसका अर्थ है कि न तो तुम महाराज उत्तानपाद के राज सिंहासन पर बैठ सकते हो या उनकी गोद में बैठ सकते हो, उसके लिए तुम योग्य नहीं हो। जबकि पुत्रों का पिता की गोद में बैठने का अधिकार होता है, इस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता, किंतु सुरुचि कह रही है कि तुम अपने पिता की गोद में बैठने के लिए योग्य नहीं हो, और यदि ध्रुव महाराज अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते, इसका अर्थ है कि वो पिता के राज सिंहासन पर भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार होता है राज सिंहासन पर, और ध्रुव महाराज ज्येष्ठ पुत्र थे महाराज उत्तानपाद के, इसलिए महाराज उत्तानपाद के राज सिंहासन पर उनका अधिकार था, किंतु सुरुचि ध्रुव महाराज को इसके लिए अयोग्य ठहराती है कि तुम बैठ नहीं सकते। क्यों नहीं बैठ सकते, कारण दे रहे, न गृहीतो मया जत्तम कुक्षा वी नृपात्म जन। तो सुरुचि कह रही है कि ध्रुव तुम नृप आत्मा जो हो, राजा के पुत्र हो यह सत्य है, और ज्येष्ठ पुत्र और साधारण दृष्टि से राजा के ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते तुम्हारा अधिकार होना चाहिए राजा की गोद में या सिंहासन पर बैठने के लिए, किंतु फिर भी तुम नहीं बैठ सकते क्योंकि तुम्हारा जन्म मेरे गर्भ से नहीं हुआ है। ये सुरुचि का कारण है क्यों ध्रुव महाराज अपने पिता की गोद में या उनके राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, क्योंकि ध्रुव महाराज का जन्म सुरुचि के गर्भ से, विमाता के गर्भ से नहीं हुआ है, वो अन्य स्त्री के गर्भ से उनका जन्म हुआ है इसलिए वो नहीं बैठ सकते। ये श्रुति तर्क दे रही है। तो कहते हैं बालोसीवत न आत्मानम अन्य स्त्री गर्भ संवृतम। ये ध्रुव तुम इस बात को समझ नहीं सकते कारण तुम बालक हो, तुम्हारी बुद्धि इतनी परिपक्व नहीं है। अतः तुम्हें ये जानना आवश्यक है कि अन्य स्त्री गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ है। ये शुरू से नहीं कह रहे कि तुम महाराज उत्तानपाद की पटरानी सुनीति के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ है, अन्य स्त्री दूसरी स्त्री कोई साधारण स्त्री के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ है। नूनं वेद भवान यस्य दुर्लभेथ मनोरथ। तो इसलिए तुम ये नहीं जानते हो कि तुम्हारा जो मनोरथ है, तुम्हारी जो इच्छा है पिता की गोद में बैठने के लिए या पिता के राज सिंहासन पर बैठने के लिए, वो इच्छा का पूर्ण होना ये दुर्लभ है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। तुम पिता की गोद में बैठने के लिए जो प्रयास कर रहे हो ये इच्छा तुम्हारी पूर्ण नहीं हो सकती। इसका अर्थ है कि राज सिंहासन पर बैठने के लिए भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। इस प्रकार जब सुरुचि कह रही है कि सुरुचि के गर्भ से ध्रुव महाराज का जन्म नहीं हुआ है इसलिए उनकी ये इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती, यद्यपि वो महाराज उत्तानपाद के ज्येष्ठ पुत्र है, फिर भी वो राज सिंहासन पर या पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। तो ये प्रथम तर्क या प्रथम कारण दे रहे हैं सूरज। अब इसका समाधान भी बता रहे हैं सूरज कि कैसे ध्रुव महाराज की इच्छा या मनोरथ पूर्ण हो सकता है। तो कहते हैं कि तपसाराध्य पुरुषं तस्यैवानुग्रहेण मे। ये ध्रुव यदि तुम अपने मनोरथ या अपनी इच्छा को पूर्ण करना चाहते हो तो एक ही उपाय है और उपाय है कि तुम तपस्या करो, तपस्या आचरण करो। क्योंकि किसी को प्रसन्न करने के लिए ये तपस्या आचरण करना आवश्यक है, कुछ कष्ट उठाना आवश्यक है। बिना कष्ट के बिना तपस्या के कोई कार्य में कोई सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे भौतिक संसार में हम देखते हैं कि हम अधिक से अधिक धन उपार्जन करना चाहते हैं तो हम लोगों को कष्ट करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। यहां तक कि लोग खाना पीना तक छोड़ देते हैं अर्थ उपार्जन करने के लिए, सोना तक भी छोड़ देते हैं। उनका एकमात्र ध्येय रहता है किस प्रकार अधिक से अधिक अर्थ उपार्जन करें। तो कोई अर्थ उपार्जन करता है यदि वो अच्छी तरह खा नहीं सकता, खाद्य ग्रहण नहीं कर सकता, अच्छी तरह सो नहीं सकता तो उस अर्थ उपार्जन में क्या लाभ है। व्यक्ति अर्थ उपार्जन करता है थोड़ा सुख प्राप्त करने के लिए, भौतिक सुख, और भौतिक सुख इसी में प्राप्त है, आहार निद्रा मैथुन, इस भौतिक सुख हम इसको मानते हैं कि अच्छा खाना मिला आज हमारा मन संतुष्ट हो गया, आज मुझे बहुत अच्छी नींद आई। आजकल लोग तो नींद नहीं आती ये उतने उत्कंठित रहते हैं लोग, तरह तरह की चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं जिससे रात में नींद नहीं आती, सो नहीं पाते हैं, और नींद आने के लिए फिर गोली खानी पड़ती है। कभी कभी ज्यादा गोली खा लेते हैं तो वहीं सया भर उनकी मृत्यु भी हो जाती है, शरीर त्याग देते हैं। तो ये सब समस्याएं हैं, किंतु भौतिक सुख लोग इसी को मानते हैं कि अच्छा खाना, अच्छा अच्छी तरह सोना और मैथुन करना और अपनी सुरक्षा करना, यही भौतिक सुख माना जाता है। और ये सुख यदि किसी को प्राप्त नहीं है उसके जीवन में तो क्या सुख वो प्राप्त करता है? धन कमाता है, परिश्रम करता है, कष्ट करता है, किंतु अच्छी तरह खा नहीं सकता या सो नहीं सकता, समय नहीं है उसके पास, दिन रात काम करता है। इसका अर्थ है कि वो कष्ट कर रहा है, तपस्या कर रहा है धन कमाने के लिए। तो कोई भी कार्य में सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमें कष्ट उठाना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। यहां तक कि सृष्टि के प्रारंभ में सृष्टि के प्रथम जीव ब्रह्मा, उनका जब भगवान की नाभि से उत्पन्न कमल से जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी भी अपने को और अपने सृष्टा को जानने के लिए ब्रह्मा जी को भी तपस्या करनी पड़ी थी। जब ब्रह्मा जी अपने प्रयास से असफल हुए अपने को जानने के लिए और अपने सृष्टा को जानने के लिए, ब्रह्मा जी ने पहले तो स्वयं प्रयास किया था, अपनी बुद्धि लगाई थी, किंतु ब्रह्मा जी असफल हो गए, उनकी बुद्धि फेल हो गई, वो अपने को और अपने सृष्टा को नहीं जान सके। जब वो असफल हुए तब उन्होंने सोचा कि अब क्या करें। उन्होंने बहुत प्रयास किया अपनी बुद्धि लगा कर अपने को जानने के लिए, जिस कमल के ऊपर बैठे हुए थे उन्होंने सोचा कि इस कमल का मूल जहां पर होगा वही मेरा सृष्टा अवश्य हो। उन्होंने बुद्धि लगाई और कमल के नाल के अंदर होते हुए मूल तक पहुंचने के लिए उन्होंने प्रयास भी किया, किंतु ब्रह्मा जी उस प्रयास में सफल नहीं हुए और पुनः वो लौट आए जहां पर बैठे थे ऊपर कमल के ऊपर, और चारों ओर अंधकार देख रहे हैं, किसी को नहीं देख पा रहे हैं, चारों ओर अंधकार है और यह अज्ञान का अंधकार था। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब क्या करें, अपनी बुद्धि काम नहीं कर रही, अब क्या करें, कैसे जाने अपने को कि मैं कौन हूं और मेरा क्या कर्तव्य है और मुझे किसने जन्म दिया है, मेरा सृष्टा कौन है। यदि मैं जान जाता हूं कि मेरा सृष्टा कौन है और मैं कौन हूं तब मैं मेरा अपना कर्तव्य निर्धारण कर सकता कि सृष्टा ने मेरी सृष्टि क्यों की है, उनका उद्देश्य क्या है। उसी समय ब्रह्मा जी ने एक शब्द सुना जो सृष्टि का पहला शब्द है, दो अक्षर वाला, त और प, तप। जैसे कोई कह रहा है ब्रह्मा जी को तपस्या आचरण करो, तप करो, तब तुम अपने सृष्टा और अपने को जान सकोगे। तो ब्रह्मा जी तपस्या में बैठ गए अपनी इंद्रियों को संयमित करके और मन को एकाग्र चित्त करके जिस सृष्टा को उन्होंने अभी तक देखा नहीं है उस अदृश्य सृष्टा का ध्यान करने लगे और इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ध्यान मग्न हो गए तो भगवान जो ब्रह्मा जी के सृष्टा थे ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित हो गए। तेन ब्रह्म हृदय आदि कवयो मुह्यंत यत सुरय। तो ये आदि कवि आदि सृष्ट ब्रह्मा ने भगवान का दर्शन किया और भगवान से पहला उपदेश प्राप्त किया। जो वेदों का ज्ञान है भगवान ने पहले ब्रह्मा जी को प्रदान किया था। तो इस प्रकार किसी भी कार्य में सिद्धि प्राप्त करने के लिए तपस्या की आवश्यकता है। यहां तक कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की आवश्यकता है। बिना तपस्या के बिना कष्ट के बिना कष्ट उठाए हम कृष्ण को नहीं समझ सकते। हमें परिश्रम करना पड़ेगा। जैसे माता यशोदा ने परिश्रम किया कृष्ण को बांधने के लिए, थक गई, कृष्ण नहीं बांधे। पिछली बार हम यहां चर्चा कर रहे थे और पसीना पसीना हो गई माता यशोदा, फिर भी मन में दृढ़ संकल्प है कि आज सुबह से माता यशोदा ने प्रारंभ किया था कृष्ण को बांधना और जब बांधने में असफल हुई फिर भी अपने प्रयास को उन्होंने त्यागा नहीं। वो पसीना पसीना हो रही है फिर भी मन में दृढ़ संकल्प है कि आज शाम हो जाए फिर भी यदि मुझे शाम तक इस प्रकार परिश्रम करना पड़े कृष्ण को बांधने के लिए, मैं शाम तक परिश्रम करने के लिए उत्सुक हूं किंतु आज मैं कृष्ण को बांध कर ही रहूं, ये दृढ़ संकल्प उन्होंने ले लिया। और जब व्यक्ति के मन में ये दृढ़ संकल्प आ जाता है तब भगवान कृष्ण उस व्यक्ति पर दया प्रदर्शन करते हैं, कृपा प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि भगवान का हृदय भी पिघल जाता है। जब भक्त इतना कष्ट उठाता है उनके लिए तो भगवान का हृदय पिघल जाता है, द्रवीभूत हो जाता है कि मेरा भक्त मेरे लिए कितना कष्ट उठा रहा है। तो भगवान अवश्य उस भक्त पर कृपा करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने जब देखा कि माता यशोदा परेशान हो रही है, पसीना पसीना हो रही है, फिर भी अपने प्रयास को त्याग नहीं कर रही है तो भगवान कृष्ण को दया आ गई माता यशोदा पर। इसलिए अपने को बंधने के लिए उन्होंने दे दिया माता यशोदा और वो बंध गए। तो उसी प्रकार भगवान की कृपा को आकर्षित करने के लिए हमें तपस्या की आवश्यकता है और वो तपस्या तभी संभव है जब हम दृढ़ संकल्प बांधे। वस्तुतः ध्रुव का अर्थ भी यही है, ध्रुव अर्थात संकल्प, व अर्थात जो स्थिर है, जो संकल्प में स्थिर है वो ध्रुव है। क्योंकि ध्रुव महाराज अपने संकल्प में स्थिर थे इसलिए वो भगवान कृष्ण को प्राप्त करने में समर्थ हुए, उनकी कृपा को प्राप्त करने में समर्थ हुए। तो ये तपस्या बहुत आवश्यक है भक्ति जीवन में। और रानी सुरुचि ध्रुव महाराज को यही उपदेश दे रही है, कहती है तपसि आराध्य पुरुषम तस्यैवानु ग्रहेण मे गर्वे तं साधयात्मानं यदिच्छसि नुपासनम्। तो सुरुचि कह रही कि हे ध्रुव, यदि वास्तव में तुम राजा महाराज उत्तानपाद के आसन को प्राप्त होना चाहते हो, अर्थात सिंहासन को प्राप्त होना चाहते हो, तो तुम्हें काम करना पड़ेगा। और वो काम क्या है? तपस्या आराध्य पुरुषम, कि तपस्या के द्वारा तुम भगवान परम पुरुष की आराधना करो और तुम्हारी तपस्या से जब भगवान विष्णु संतुष्ट हो जाएंगे, तुम पर अनुग्रह करेंगे, कृपा करेंगे, तब क्या होगा कि भगवान के अनुग्रह से, कृपा से तुम उनसे वरदान को प्राप्त करोगे, जिससे कि तुम्हारे अगले जन्म में तुम मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म होगा, तुम मेरे पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करोगे। तब जाकर महाराज उत्तानपाद के आसन को, राज सिंहासन को तुम प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा नहीं। तो सुरुचि ने ये उपाय बताया ध्रुव महाराज। तो इससे सुरुचि का गर्व अहंकार प्रतिध्वनित होता है, क्योंकि सुरुचि समझ गई थी कि महाराज उत्तानपाद उनको कितना प्रेम करते हैं। और यदि कोई स्त्री समझ लेती है कि उसका पति उसको अत्यधिक प्रेम करता है, तो स्त्री के मन में गर्व अहंकार आना स्वाभाविक है। और इस प्रकार सुरुचि के मन में गर्व अहंकार आ गया कि वो महाराज उत्तानपाद के कितने प्रिय प्रिय पत्नी है, इसलिए वो इस ध्रुव महाराज के प्रति जो सुरुचि का वाक्य है इसमें ध्वनित होता है सुरुचि का गर्व अहंकार। सुरुचि ये कहना चाह रही है कि ध्रुव, तुम तपस्या करो, भगवान की आराधना करो। और किस लिए आराधना करो? मेरे पुत्र के रूप में जन्म होने के लिए, क्योंकि मेरे पुत्र होने के बिना तुम महाराज उत्तानपाद के राज सिंहासन को प्राप्त नहीं कर सकते। और मेरा पुत्र होने के लिए तुम्हें भगवान से आशीर्वाद लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरा गर्भ कोई साधारण गर्भ नहीं तो मेरे गर्भ से जन्म ग्रहण करने के लिए तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी, कठोर तपस्या, और भगवान से कृपा प्राप्त करना पड़ेगा। इसका अर्थ है कि तुम्हें भगवान से कृपा प्राप्त होकर, वरदान प्राप्त होकर मरना होगा पहले, तभी तो जाकर फिर मेरे गर्भ से जन्म ले सकते हो, बिना मृत्यु के तो हो नहीं सकता। इसका अर्थ है सुरुचि ध्रुव महर्षि की मृत्यु भी चाहती है। तो मृत्यु के पश्चात अपने गर्भ में उनका जन्म होने के लिए उनको तपस्या करनी पड़ेगी और भगवान से ही वरदान प्राप्त होना पड़ेगा। तो इसमें सुनीति का जो गर्व अहंकार प्रतिध्वनित होता है इस वाक्य में। फिर भी ध्रुव महाराज के प्रति सुरुचि का जो कटु वाक्य है, यद्यपि ध्रुव महाराज के लिए ये वाक्य बाण अत्यंत कठोर था, फिर भी सुरुचि ने ध्रुव महाराज से भगवान की उपासना करने के लिए कही, भगवान की भक्ति आचरण करने के लिए कही। जैसे भौतिक संसार में हम देखते हैं कि हम जब कभी असुविधा में पड़ते हैं, कष्ट में हैं, दुख में हैं, तो हम क्या करते हैं, कोई देवी देवताओं के पास जाते हैं, सोचते हैं कि अमुक देवी या देवता मेरा दुख दूर कर देंगे। हम उनकी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, या कभी कभी उनके लिए तपस्या भी करते हैं, देवी देवता उनके लिए, और सोचते हैं कि वे हमारा कष्ट या दुख दूर कर देंगे। किंतु देवी देवताओं का भी, उनकी भी अपनी सीमा होती है, ये सर्वोच्च नहीं है देवी देवता। एकला ईश्वर कृष्ण आर सर्व भृत्य, कि भगवान श्री कृष्ण एकमात्र ईश्वर है, परम नियंत्रण कार्य, और जो 33 करोड़ देवी देवता हैं, ये सब भगवान कृष्ण के सेवक हैं। इनका अपना कोई अपनी शक्ति नहीं है, ये भगवान कृष्ण से ही शक्ति को प्राप्त करते हैं और उनका वरदान अस्थाई होता है। यहां तक कि भौतिक संसार में जो लोग धन की कामना करते हैं और धन की कामना करते हुए लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं, तो बहुत सारे जो दुकानदार होते हैं उनके दुकान पर लक्ष्मी जी और गणेश जी ये दोनों रहते हैं। तो गणेश जी तो विघ्न विनाशन है, सारे विघ्न या कष्ट को दूर करेंगे, विपत्तियों को दूर करेंगे, और लक्ष्मी जी धन वर्षा करेंगे। इसी उद्देश्य से लोग लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं और गणेश की पूजा करते हैं। किंतु उनको पता नहीं है कि जो लोग केवल लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी का एक नाम है चंचला, अर्थात वो चंचल स्वभाव वाली है, अर्थात लक्ष्मी देवी यदि किस पर कृपा भी करती है, किंतु अपने चंचल स्वभाव के कारण आज किसके घर पर है कृपा कर रही है, कल उस घर को त्याग करके दूसरे घर पर चली जाएगी। तो देखा जाता है कोई लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त होकर धन प्राप्त कर लेता है, लक्ष्मी देवी उस स्थान को छोड़कर चली जाती है, तो फिर वो गरीब हो जाता है, उसका धन चला जाता है। इसका अर्थ है कि लक्ष्मी देवी की कृपा भी स्थायी नहीं है, क्योंकि वो चंचला है। अब तो दूसरी देवी देवताओं की बात क्या कहें, किंतु लक्ष्मी देवी भगवान की पतिव्रता पत्नी है, इसलिए लक्ष्मी देवी जब भगवान के साथ होती है, नारायण के साथ, तो वो उस समय अपने चंचल स्वभाव को त्याग देती है, वो चंचला न होकर अचंचला हो जाती है, चंचल स्वभाव को त्याग देती है। इसका अर्थ है कि जो लोग केवल लक्ष्मी की पूजा नहीं, लक्ष्मी के साथ नारायण की पूजा करते हैं, या श्रीमती राधारानी के साथ कृष्ण की पूजा करते हैं, या सीता जी के साथ राम की पूजा करते हैं, क्योंकि ये लक्ष्मी स्वरूप है सीता जी, और राधारानी तो सारे लक्ष्मी सर्व लक्ष्मीमयी है, सारी लक्ष्मियां भी राधारानी से सृष्टि होती है, सारी लक्ष्मियों के मूल हैं श्रीमती राधा। तो जब लक्ष्मी देवी भगवान के साथ होती हैं, तो उस समय अपने चंचल स्वभाव को त्याग देती है, अचंचला हो जाती है। इसका अर्थ है कि जो लोग लक्ष्मी नारायण सीताराम या राधा कृष्ण की पूजा करते हैं उनकी कृपा से ये लोग जो धन को प्राप्त होते हैं उनका धन स्थायी होता है, क्योंकि लक्ष्मी उसके गृह को त्याग करके नहीं जाती, जहां उनके प्राणनाथ होते हैं, भगवान होते हैं, लक्ष्मी देवी उस स्थान को त्यागती नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण आविर्भूत हुए ब्रजभूमि में, तथा आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान, कि जब से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, आविर्भाव हुआ ब्रज में, ब्रज समृद्धि संपन्न हो गया। कैसे? न हरेर निवासात्म गुणे रमा क्रीडंग अभुन रूप, कि ब्रज भूमि रमा देवी लक्ष्मी देवी की क्रीड़ा भूमि बन गई। किसलिए? न ब्रज भूमि भगवान कृष्ण के निवास स्थल होने के कारण, भगवान निवास करने के कारण ब्रजभूमि लक्ष्मी देवी की क्रीड़ा भूमि बन गई, वो सदा सर्वदा रहने लगी ब्रज में, इसलिए ब्रज समृद्धिमान हो गया। तो सुरुचि ने यद्यपि गर्व पूर्वक अहंकार पूर्वक सुरुचि कह रही थी जो महाराज से कि वो तपस्या करके भगवान की आराधना करे और उनकी कृपा से उनके अपने गर्भ से जन्म ग्रहण करे, किंतु इसमें सुरुचि का आशीर्वाद भी था ध्रुव महाराज के प्रति। कम से कम सुरुचि ध्रुव महाराज से ये नहीं कह रही थी कि तुम देवी देवताओं की उपासना करो, वो कह रही थी भगवान की उपासना करो। तो प्रकारांत में या परोक्ष रूप से यह वचन जो है, यद्यपि सुरुचि ईर्षा भाव से बोल रही थी ध्रुव महाराज, किंतु सुरुचि का वचन ध्रुव महाराज के लिए वरदान साबित हो गया, वरदान बन गया ध्रुव महाराज के प्रति। और बाद में हम देखेंगे किस प्रकार ध्रुव महाराज इस वरदान को अपने जीवन में उतारते हैं, भगवान की उपासना करते हैं। तो यहां पर जब सुरुचि ने इस प्रकार कहा ध्रुव महाराज से, तो ध्रुव महाराज बहुत अपमानित हुए, जबकि उनकी आयु 5 साल की थी। फिर भी ध्रुव महाराज बहुत अपमानित हुए, क्योंकि ध्रुव महाराज के शरीर में क्षत्रिय का रक्त प्रवाहित हो रहा था, वो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय संतान थे, और जो क्षत्रिय होते हैं ये लोग युद्ध क्षेत्र में शत्रु के तीव्र बाण को, मर्मभेदी बाण को सहन करने में समर्थ है। ये क्षत्रिय का एक नियम होता है, क्षत्रिय जब युद्ध करता है युद्ध भूमि में, युद्ध भूमि में वो अपना जीवन दे देता है, किंतु कभी भी अपने जीवन को बचाने के लिए शत्रु की ओर पीट करके नहीं भागता। ये क्षत्रिय का एक गुण है, अर्थात क्षत्रिय शत्रु का वाण सहन, मर्मवेदी वाण सहन करते हुए प्राण दे देता है, किंतु क्षत्रिय वाक्यवाण का सहन नहीं कर सकता। ये क्षत्रिय का एक गुण है, वो शत्रु के बाण को सहन कर सकता है, किंतु किसी का वाक्य वाहन अर्थात अपमान क्षत्रिय सहन नहीं कर सकता। इसलिए बताया गया है शास्त्रों में, न तथा तप्यते विद्ध पुमान बाण सुमर्मगे जथा तुदंति मर्मस्ता ही असतंग पुरुषे सब। तो व्यक्ति या क्षत्रिय हृदय में मर्म मेधी बाण को बाण बिंधने पर उसकी पीड़ा को उतना अनुभव नहीं करता जितनी पीड़ा उसे वाक्यवाण से प्राप्त होती है। अर्थात क्षत्रिय कोई अपमान का सहन नहीं कर सकता। और महाराज ध्रुव के लिए सुरुचि का वाक्यवाण ये पर्याप्त था उनके हृदय को हृदय में पीड़ा प्रदान करने के लिए। इस विमाता के वाक्यवाण को ध्रुव महाराज सहन नहीं कर पा रहे थे। और जब वो छोटे बालक थे उस समय वो क्या कर सकते थे, जब विमाता इस प्रकार बोल रही है तो एक छोटा सा बालक कहां जाएगा न्याय के लिए, किसके पास जाएगा। तो पास में अपने पिता और सम्राट महाराज उत्तान पास बैठे हुए हैं और राजा का कर्तव्य है कि वो कभी अपने राज्य में किसी अन्याय को प्रश्रय नहीं देगा। ये नहीं देखेगा राजा कि किस पर अन्याय हो रहा है। और अब महाराज उत्तान पास के सामने ही अन्याय हो रहा था। एक निरीह बालक ध्रुव जो अपने पिता की गोद में बैठने के लिए प्रयास कर रहे थे और उनको ये सब सुनना पड़ रहा है विमाता से बिना दोष के, उन पर ये घोर अन्याय था। और सम्राट उत्तानपाद वहां बैठे हुए ये सब देख रहे थे और सुन रहे थे, क्योंकि सुरुचि जो बोल रही थी महाराज उत्तानपाद को सुना करके बोल रही थी, क्योंकि उनके मन में इतना गर्व दम्भ आ गया था कि महाराज उत्तानपाद उनको उनके प्रति प्रेम भाव प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए वो कुछ नहीं बोलेंगे। हम जो कहेंगे महाराज उत्तानपाद कुछ नहीं बोल सकते। और ऐसा ही हुआ कि महाराज उत्तानपाद कुछ बोल नहीं सके, अपने सामने ये अन्याय को घटने दिया गया। तो ध्रुव महाराज ने जब पिता की ओर महाराज उत्तानपाद की ओर देखे, उन्होंने देखा और ध्रुव महाराज यही आशा करते थे कि अब पिताजी कुछ बोलेंगे, इस अन्याय का प्रतिवाद करेंगे और उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। ध्रुव महाराज ने पिता के मुख की ओर देखा इसी आशा से पिताजी कुछ बोलेंगे, विमाता को डांटेंगे, उनको कुछ न्याय प्रदान करेंगे, किंतु ध्रुव महाराज ने देखा कि पिताजी मौन रहे, कुछ नहीं बोले। अब बालक ध्रुव का और कौन सहारा है, कौन आश्रय है, जब पिताजी उनको आश्रय नहीं दे रहे हैं तो बालक ध्रुव क्या कर सकता है। तब ध्रुव ने देखा कि पिताजी कुछ नहीं बोल रहे हैं तो उनके हृदय में जो विमाता के वाक्यवाण की पीड़ा और बहुगुण में वर्धित हो गई। और जब हृदय में पीड़ा होती है तो उसका प्रकाश शरीर में दृष्टिगत होता है, हृदय की पीड़ा का परिप्रकाश शरीर में होता है, दृष्टिगत होता है। अर्थात व्यक्ति दीर्घ श्वास छोड़ता है, पीड़ा में व्यक्ति दीर्घ श्वास छोड़ता है और नेत्रों से अश्रु की धाराएं प्रवाहित होती। जब व्यक्ति के लिए कोई उपाय नहीं, कुछ नहीं कर सकता, तो वो रो सकता है और ये शास्त्रों में बताया गया है, बालानंग रोदनंग बलम। जो बालक हैं या स्त्री हैं, उनका बल क्या है? रोने में, यही उनका बल है, क्योंकि शारीरिक बल में उनमें नहीं होता है। तो जो रोते हैं तो दूसरे लोगों का हृदय द्रवीभूत हो जाता है उनका रोना देखकर। कोई बच्चा रो रहा है तो सारे लोग आएंगे बच्चे को शांत करने के लिए, सांत्वना देने के लिए, क्योंकि बच्चों का यही बल है रोना। या कोई स्त्री रो रही है तो दूसरे लोग उसको सहायता देने के लिए आएंगे, उनके हृदय द्रवीभूत हो जाता है उनके रोने में। तो दीर्घन, हाँ सर, तो ध्रुव महाराज जब इस प्रकार स्थिति को प्राप्त हुए तो दीर्घ श्वास छोड़ रहे थे और रो रहे थे ध्रुव महाराज। तो मैत्रेय मुनि वर्णन कर रहे हैं कि मातुः सपत्न्या सदुरुक्त विद्ध श्वसन रुषा दंड हतो यथाहि। तो विमाता के दुरुक्ति, दुह उक्ति, जो अपशब्द विमाता ने कहे, तो वो अपशब्द ध्रुव महाराज के हृदय को अपशब्दों ने विद्ध कर दिया था बाणों के समान, और ध्रुव महाराज क्रोधित हो गए थे और दीर्घ श्वास छोड़ रहे थे। उसी प्रकार जिस प्रकार कोई सर्प को कोई डंडे से मरता है तो सर्प की क्या प्रतिक्रिया होती है? सर्प तुरंत क्रोधित हो जाता है। किसी सर्प के ऊपर आप डंडे से मार लगाए तुरंत सर्प क्रोधित होकर अपना फाना ऊपर उठा लगा डसने के लिए। तो उसी प्रकार ध्रुव महाराज क्रोधित हो गए विमाता के वाक्यवाण को सुनकर या विद्ध होकर वाक्यवाण से, दीर्घ श्वास छोड़ रहे हैं। तो सर्प जिस प्रकार आहत सर्प के समान वो क्रोधित हो रहे हैं। हित्वा मिशंतं पितरं सन्नवाचं जगाम मातु प्ररुदं प्रकाशकासं। और जब ध्रुव महाराज देखा कि पिताजी मौन हैं इस घटना से तो उनको रोना आ गया और रोने लगे। पहले तो क्रोधित हुए थे विमाता के वचन को सुनकर और आशा करते थे कि पिताजी कुछ न्याय दिलाएंगे, अब पिताजी मौन है कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ध्रुव महाराज को उसकी उनकी आंखों में आंसू आए और रोने लगे और रोते हुए उस स्थान को त्याग करके वो कहां जाएंगे? अपनी माता के पास जा रहे हैं, सुमिति के पास। भौतिक जीवन में ऐसी घटनाएं घटती रहती है, तो ध्रुव महाराज के जीवन में भी ऐसी घटना घटित हुई। किंतु भौतिक जीवन में जो लोग इस प्रकार की समस्या का सम्मुखीन होते हैं ये उसका समाधान नहीं कर पाते हैं। या कैसे समाधान करना उसको नहीं जानते, किंतु ध्रुव महाराज ने इसका समाधान ढूंढ लिया था। इसलिए ध्रुव महाराज महान है कि भौतिक समस्या का समाधान, एक आध्यात्मिक समाधान उन्होंने ढूंढ लिया था। हम भौतिक समस्याओं का भौतिक समाधान ढूंढते रहते हैं, खोजते रहते हैं, किंतु वस्तुतः भौतिक समस्याओं का समाधान भौतिक समाधान में नहीं है, आध्यात्मिक समाधान में है। तो ध्रुव महाराज ने वो आदर्श पथ प्रदर्शित किया था। तो अब ध्रुव महाराज तो जब ध्रुव महाराज ने सोचा अब उनका एकमात्र आश्रय उनकी माता है, अब वो अपनी माता के पास जा रहे हैं। तंगनी स्वसंतं स्फुरिता धरोष्ट, ध्रुव महाराज दीर्घ श्वास त्याग कर रहे हैं और उनका होंठ कांप रहे हैं। जब व्यक्ति क्रोधित हो जाता है होंठ कांपने लगता है। सुनीति उत्सर्ग उदूज है वालम, और इस प्रकार रोते हुए जब ध्रुव महाराज माता सुनीति के पास पहुंचे और सुनीति ने दूर से देखा कि उनका एकमात्र पुत्र सपत्नी के द्वारा अपमानित होकर रोते हुए उनके पास आ रहे हैं, और तब तक सुनीति निशम्य तत्पौर मुखात नितंतं सा व्यथे यद गदितं सपत्नी। तब तक सुनीति ने सुन लिया था कि उनकी सपत्नी सुरुचि ने क्या कहा है अपने पुत्र को, और किससे सुना था ना, पूर्व नारियों से, राजप्रसाद में जो स्त्रियां थी, जो वहां सेविकाएं थी, उन लोगों ने आकर सुनीति को बता दिया था कि सुरुचि ने तुम्हारे पुत्र को ऐसा ऐसा कहा है राजा के सामने। तो उस बात को सुनकर सुनीति बहुत व्यथित थी, बहुत दुखी थी, क्योंकि वो जानते थे कि राजा महाराज उत्तानपाद उनसे प्रेम नहीं करते हैं, महाराज उत्तानपाद के द्वारा स्वयं सुनीति भी उपेक्षिता है, और इस स्थिति में सपत्नी सुरुचि ने उनके पुत्र को अपमानित किया है, तो सुनीति क्या कर सकती है उस स्थिति में। इसलिए सुनीति ने जब देखा अपने पुत्र को आते हुए और रोते हुए आ रहे हैं ध्रुव महाराज, तो स्वयं भी व्यथित होकर सुनीति भी रो रही थी, और अपने रोते हुए पुत्र ध्रुव को उन्होंने अपनी गोद में उठा लिया। अब दोनों माता और पुत्र ये दोनों रो रहे हैं। इस दुख में, इस कष्ट में माता और पुत्र दोनों रो रहे हैं। सत्सुज धर्जं बिललाप शोक दावाग्निना दावल अतीव बाला। तब सुनीति का धैर्य उन्होंने सुनीति ने खो दिया अपना धैर्य और वो विलाप करने लगी सुनीति। शोक के कारण वो विलाप करने लगी और वाक्यं सपत्ने स्मरति सरोज श्री आदृशा भास्कर कलाम वाह। और बार बार सपत्नी के वाक्य का स्मरण करती हुई सुनीति का हृदय का जो कोह है वो बढ़ रहा था। वो बार बार रो रही थी, बार बार स्मरण आता था सुरुचि का कुवाक्य और रो रही थी बार बार। और इस प्रकार माता और पुत्र दोनों रोते जा रहे थे और इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हो गया। तब सुनीति ने सोचा दीर्घं श्वसन्ति वृजिनस्य पारं अपश्यति बालकं आह बाला। तो ये रोते हुए सुनीति का जो सौंदर्य था ये जिस प्रकार दावाग्नि वन में जो आग लगती है उसको दावाग्नि कहा जाता है। तो वन में जब आग लगती है तो वृक्षों की पत्तियां सूख जाती है, जल जाती है। तो उसी प्रकार इस दुख से सुनीति के जो सुंदर मुखमंडल जो कमल पुष्प के समान थे वो मुरझा गया था, उनका सौंदर्य मुरझा गया था। बहुत दुखी थी। और जब व्यक्ति दुख में होता है उसका सौंदर्य मुरझा जाता है, स्वाभाविक है। दुख का प्रतिफलन हम अपने मुख या रूप में देख सकते हैं, विशेष रूप से मुख में, कि जो व्यक्ति आनंद में है उसके मुख से पता चल जाता है कि व्यक्ति आनंद में, जो दुखी है उसके मुख से पता चलता है कि ये दुखी है। इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। मन का जो भाव ये मुख में प्रतिफलित होता है। तो यहां पर सुनीति ने देखा कि हम दोनों रो रहे हैं माता और पुत्र इस दुख से और इसका कोई अंत नहीं है, इस दुख का कोई अंत नहीं है। तो सुनीति ने सोचा कि हम माता और पुत्र दोनों यदि हजारों वर्ष लाखों वर्ष तक इस प्रकार रोते रहेंगे फिर भी हमारा दुख दूर नहीं होगा, इस दुख का कोई अंत नहीं है। तो सुनीति ने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए क्योंकि मेरा बालक पुत्र उसका कोई आश्रय नहीं है, वो एकमात्र मुझे आश्रय मानकर मेरे पास आया है और उसके इस दुख में मैं यदि रोती रहूंगी तो मेरे बालक ध्रुव को आश्वासन कौन प्रदान करेगा। इसलिए माता के रूप में मेरा कर्तव्य है कि बालक ध्रुव को मैं आश्वासन प्रदान कर उसके दुख को दूर करने का प्रयास करूं। यह सोचते हुए माता सुनीति ने ध्रुव महाराज को ये प्रथम उपदेश प्रदान किया। तो ये सुनीति नाम से पता चलता है कि सुनीति अर्थात वो नीतिवान थी, उत्तम नीति संपन्न थे, जबकि सुरुचि रुचि संपन्न थे, नीति संपन्न नहीं। शोभना रुचि जैसे सुरुचि जस्या, तो शोभनीय रुचि उनमें थी किंतु नीति नहीं थी। और सुनी थी जो धर्म को मानती थी, धर्म नीति को मानती थी, इसलिए प्रथम उपदेश प्रदान किया अपने पुत्र को, जो दुखी पुत्र जो रोता हुआ उनके पास आया है, माता को एकमात्र आश्रय मानकर। अब माता अपना रोना बंद करके पुत्र को आश्वासन देना चाह रही है और प्रथम उपदेश दे रही है, मां अमंगलं तात परे सुमस्ता यह वत्स, तुम दूसरों के अमंगल की चिंता मत करो, क्योंकि सुनीति जानते थे कि बालक ध्रुव विमाता के द्वारा कटु बाण से विद्ध है उसका हृदय, और बालक के मन में प्रतिशोध की भावना आना स्वाभाविक है, किसी के मन में भी प्रतिशोध की भावना आ सकती है, ये स्वाभाविक है। इसलिए माता सुनीति ध्रुव से उपदेश देकर कहती है कि मां अमंगलं तात परे सुमस्ता, हे वत्स, तुम दूसरों का अमंगल मत सोचो, दूसरों के अमंगल की कामना मत करो। माता सुनीति ने सोचा कि हो सकता है कि ध्रुव के मन में विमाता के प्रति कोई अमंगल की कामना हो, इसलिए पहला उपदेश दिया कि मन में अमंगल की कामना मत करो। अब क्यों नहीं करना है दूसरों के अमंगल की कामना वो कह रही है, उसका कारण भी दे रही है कि भुंगते जनो यत पर दुख दस्तत, यह वत्स, जो व्यक्ति दूसरों को दुख देता है, कष्ट देता है, वो व्यक्ति स्वयं उस कष्ट को भोग करता है। ये संसार का नियम है, हम किसी व्यक्ति को यदि कष्ट देते हैं, किसी तरह का कष्ट देते हैं, तो उस कर्म का फल है कि हम भी उसी तरह का कष्ट भोग करेंगे, हो सकता है इस जन्म हो, दूसरे जन्म हो, या कई जन्म के बाद हमें ऐसा ही कष्ट भोग करना पड़ेगा। यदि हम किसी को अपमानित करते हैं, हमें कोई अपमान करेगा, हमें भी अपमानित होना पड़ेगा। हम किसी को कष्ट देते हैं, हमें भी कष्ट भोग करना पड़ेगा, उसी प्रकार का कष्ट। इसलिए शास्त्र में बताया गया है कि जो लोग मांस मछली खाते हैं वो जीव हत्या करते हैं, और शास्त्र में बताया गया है कि ऐसे लोग जो जीव हत्या करके मांस मछली खाते हैं, वही मांस मछली दूसरे जन्म में वो मनुष्य बनेंगे और इस व्यक्ति की हत्या करेंगे, इसका मांस खाएंगे, ये दंड भोग करना पड़ेगा। तो ये भगवान का नियम है, संसार का नियम है, जो जैसा करेगा उसको उसी प्रकार का दंड मिलेगा। इसलिए हमें किसी के अमंगल की कामना करने की आवश्यकता नहीं है, जो किसी का अमंगल करता है, किसी को कष्ट देता है, भगवान उसको कष्ट प्रदान करेंगे, हमें कामना करने की आवश्यकता नहीं। हम कामना करें या ना करें उस व्यक्ति को मिलेगा, भगवान दम प्रदान करेंगे। इसलिए सुनीति का जो प्रथम उपदेश है ये बहुत शिक्षाप्रद है सभी के लिए, कि चाहे जीवन में हमें कोई कष्ट देता हो या कुवाक्य अपमानित करता हो, हमें उसके अमंगल की कामना नहीं करनी चाहिए। भगवान उसको दंडित करेंगे वो भगवान जानते हैं, क्योंकि कौन क्या कर रहा है भगवान को सभी पता, सब कुछ पता है। भगवान सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। इसलिए व्यक्ति जब कुछ कार्य करने से पहले मन में सोचता है करने के लिए, भगवान को पता चल जाता है ये करने के लिए सोच रहा है, और जब व्यक्ति वो कार्य करता है तो भगवान देखते हैं, साक्षी रहते हैं, तो उसके अनुसार उसका दंड कब मिलेगा कैसे मिलेगा भगवान निश्चित करते हैं। इसलिए कोई अपने कर्म के फल से बच नहीं सकता, ये संसार का नियम है। तो माता सुनीति ने इसलिए ध्रुव महाराज को ये पहला उपदेश दिया कि ध्रुव किसी के अमंगल की कामना नहीं करना, और विशेष रूप से तुम्हारी विमाता ने अपमानित किया है उसके प्रति अमंगल की कामना नहीं करना, क्योंकि जो दूसरों को कष्ट देता है भगवान उसको कष्ट देते हैं, उसी प्रकार कष्ट देते हैं। तो ध्रुव महाराज को इस प्रकार सांत्वना प्रदान कर रहे थे, माता सुनीति सांत्वना प्रदान कर रही थी। अब माता सुनीति ध्रुव महाराज को उपदेश दे रही है कि इस स्थिति में जबकि वो विमाता के द्वारा अपमानित हुए हैं, तो इस स्थिति में उनको क्या करना चाहिए, इसका समाधान क्या है, ये एक भौतिक समस्या है, सांसारिक समस्या है, और इस प्रकार की समस्याओं का सम्मुखीन हम हर रोज होते रहते हैं। कोई किसी का अपमान करता रहता है, परिवार में होता है बाहर भी होता है, ये होता रहता है, किंतु इसका समाधान क्या है, ये समाधान कैसे हम कर सकते हैं। तो सब सुनीति ध्रुव को उपदेश दे रही है, और एक भौतिक समाधान नहीं दे रही है, एक आध्यात्मिक समाधान दे रही है, जिससे ध्रुव का सदा के लिए मंगल ही हो। तो कह रहे हैं कि सत्यं सुरुच्याभिहितं भवान में जब दुर्भगाया उदरे गृहीत। तो सुनीति स्वीकार कर रही है ध्रुव महाराज के सामने, अपने पुत्र के सामने, कि हे पुत्र, तुम्हारी विमाता सुरुचि ने जो कुछ कहा है वो सत्य है। क्या सत्य है, कि सुरुचि ने कहा था तुम एक साधारण स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुए। तो सुनीति बहुत विनम्र संपन्न थे, ये भक्त का लक्षण होता है, जो भगवान के भक्त होते हैं वो विनम्र होते हैं, उनमें गर्व अहंकार नहीं होता। जबकि सुरुचि भक्त नहीं थी इसलिए गर्व अहंकार आ गया था, अब माता सुनीति जो भक्त थी इसलिए कह रहे हैं कि सुरुचि ने जो कहा है वो सत्य है। क्या सत्य है, कि तुमने एक हतभागिनी स्त्री के गर्भ से तुमने जन्म लिया। तो सुनीति अपने को हतभागिनी मान रही थी, भाग्यहीना मान रही थी, क्योंकि वो पति का प्रिय नहीं थी, पति के द्वारा उपेक्षिता थी। तो स्त्री के भाग्य में यदि इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जो पति के द्वारा उपेक्षिता हो, तो वह स्त्री कैसे सुखी हो सकती है। इसलिए पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के बीच उत्तम संबंध रहना आवश्यक है, और दोनों मिलकर जब भगवान कृष्ण की सेवा करें, परस्पर को सहायता प्रदान करें भगवान की सेवा में, तो वो जीवन जो है गृहस्थ जीवन सुखमय हो सकता है। जब भगवान कृष्ण गृहस्थ जीवन के केंद्र बिंदु बन जाते हैं, पति पत्नी मिलकर भगवान की सेवा करते हैं। तो यहां पर सुनीति अपने को हतभागिनी मान रही है, क्योंकि अपने पति के द्वारा उपेक्षिता, इसलिए कह रही है कि बस तुमने एक हतभागिनी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, और इस हतभागिनी स्त्री के स्तन से तुम परिपालित हुए, तुम बड़े हुए हो स्तन का दूध पान करके, और तुम्हारे पिता मुझे अपनी पत्नी तक नहीं मानते हैं, पत्नी तक क्या अपनी दासी तक भी नहीं मानते हैं। इसलिए श्रुति ने जो कहा है वो वस्तुतः सत्य है कि तुम एक हतभागिनी स्त्री के पुत्र हो, तुम राज सिंहासन पर कैसे बैठ सकते हो। तो अब माता सुनीति उपदेश दे रही है कि अब ध्रुव महाराज को क्या करना चाहिए। अब इस स्थिति से उद्धार पाने के लिए, मुक्त होने के लिए ध्रुव महाराज को क्या करना चाहिए, सुनीति उपदेश दे रही है। अतिष्ठ तत्ता तभिमस् सरस्तम उक्तं समात्रापि यदि जद व्यलीकम्। तो सुनीति कह रही है कि ध्रुव, तुम्हारे विमाता ने जो उपदेश तुम्हें दिया है यह सत्य है कि तुम एक हतभागिनी स्त्री के गर्भ से जन्मे हो, किंतु पिता के राज सिंहासन को प्राप्त करने के लिए या पिता की गोद में बैठने के लिए तुम्हारी विमाता ने तुम्हें एक उपदेश भी दिया। क्या दिया था सुरुचि ने? कि तुम भगवान हरि की आराधना करो। यदि तुम पिता के राज सिंहासन में बैठना चाहते हो, तुम भगवान हरि की आराधना करो तपस्या के द्वारा। यद्यपि उस आराधना का उद्देश्य सुरुचि ने और कुछ बताया था कि उनके गर्भ से जन्म लेने के लिए, वरदान प्राप्त करने के लिए, किंतु सुनीति कह रही है कि तुम्हारी विमाता ने जो प्रथम उपदेश दिया है हरि की आराधना करने के लिए, तुम वही करो। अतिष्ठ तत्तात विमस् सरस्तम। तो भगवान हरि की आराधना करने के लिए तुम्हारी पहली योग्यता यह होनी चाहिए, यदि कोई भगवान को संतुष्ट करना चाहता है तो उसको विमत्सर बनना पड़ेगा, अर्थात ईर्ष्या रहित होना पड़ेगा। हृदय में जो ईर्ष्या का भाव होता है, ये ईर्ष्या के भाव के कारण हम दूसरों की अनिष्ट चिंता करते हैं और इस प्रकार हमारी अधोगति होती है। उस व्यक्ति का तो कुछ नहीं होता जिसकी हम अनिष्ट चिंता करते हैं, हमारी अधोगति होती है अनिष्ट चिंता के कारण। इसलिए जो ईर्ष्या भाव है ये बहुत भयंकर है। और जो भगवान को प्रसन्न करना चाहता है और उसके हृदय में यदि ईर्ष्या भाव है तो वो आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता या भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्त को ईर्ष्या रहित होना आवश्यक है। इसलिए माता सुनीति ध्रुव महाराज को उपदेश दे रही है कि विमत्सरत्व, हे ध्रुव पहले तुम विमत्सर बनो, ईर्ष्या रहित बनो, अर्थात माता सुरुचि के प्रति कोई ईर्ष्या भाव पोषण मत करो। ईर्ष्या भाव पोषण करके तुम भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकते। तो पहले बता दिया था कि अमंगल कामना मत करो और ईर्ष्या भाव भी मन में मत रखो। और उत्तंग समात्रा भी जद अव्यलीकम, और तुम्हारी विमाता ने जो कहा है सत्य वाक्य, तुम उसी का पालन कर। और विमाता ने कहा था हरि की उपासना करने के लिए, तो सुनीति भी कह रही कि तुम वही करो। आराधया अधोक्षद पाद पद्मम यदिच्छ से अध्यासनम उत्तम यथा। तुम यदि उत्तम के समान, तुम्हारे भ्राता उत्तम के समान राज सिंहासन प्राप्त करना चाहते हो तो तुम वही भगवान हरि की आराधना करो, उनकी पूजा करो, उनके चरण कमल की पूजा करो, तो तुम्हारे विमाता ने ये सत्य वाक्य कहा है कि जब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की पूजा करता है तो उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है, चाहे भौतिक कामना या आध्यात्मिक कामना क्यों ना, सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है क्योंकि भगवान वांछाकल्प तरु है। जिस प्रकार कल्प वृक्ष के पास आप जाकर कुछ भी मांगे कल्प वृक्ष प्रदान कर सकता है, उसी प्रकार भगवान वांछा कल्प तरु है। कोई भगवान के पास जाए कोई भी कामना लेकर भगवान उसको पूर्ण कर देता है, वो वांछा कल्प तरु है। इसलिए तुम यदि अपने पिताजी का सिंहासन चाहते हो तो भगवान हरि की आराधना करो, कोई देवी देवता तुम्हारी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकते, भगवान हरि ऐसा कर सकते हैं। तो यहां पर जो देशहीन की बात कही गई है, माता सुनीति ने उपदेश दिया है, तो शास्त्रों में भगवान कैसे द्वेषहीन भक्त पर कृपा करते हैं उसका भी वर्णन है। ये महाभारत में वर्णन है कि पितेव पुत्रं करुणो नोद्वेजयति जो जनम विशुद्धस्य ऋषिकेश तस्य तुर्णं प्रसीदति। कि जिस प्रकार जो व्यक्ति दूसरे लोगों को उद्वेग प्रदान नहीं करता है, क्योंकि व्यक्ति जब ईर्ष्या परायण होता है कुछ बोल देता है, कुछ कार्य ऐसा करता है जैसे दूसरों के मन में उद्वेग उत्पन्न हो जाता है। तो जब व्यक्ति जो व्यक्ति दूसरों के मन में उद्वेग उत्पन्न नहीं करता है, दूसरों के प्रति ईर्ष्याभाव पोषण नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति पर पिते व पुत्रं करुणा, जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के प्रति दयाभाव प्रदर्शन करता है, उसी प्रकार भगवान ऐसे व्यक्ति के प्रति दयाभाव प्रदर्शन करते हैं और अति शीघ्र उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं। जो व्यक्ति ईर्षा रहित होकर दूसरों को उद्वेग प्रदान नहीं करता, भगवान तुरंत प्रसिद्ध होते हैं, अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं ऐसे व्यक्ति। किंतु जो ईर्षा युक्त व्यक्ति है, ईर्षा परायण व्यक्ति है, चाहे वो कितनी भी भक्ति कर रहे हैं, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। और ऐसे भक्तों को तामस भक्त कहा गया है, जो दूसरों के प्रति क्रोध प्रकट करते हैं, ईर्षा परायण होते हैं, दूसरों की अनिष्ट चिंता करते हैं, तो ऐसे भक्त तामस भक्त कहे जाते हैं, नीच कोटि के भक्त हैं। तो ऐसे भक्त भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। और यदि कोई व्यक्ति जीवन में शांति चाहता है, तो भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। दिशतः परकाये मान मानिनो भिन्न दर्शिना, जो व्यक्ति अभिमानी है, मन में गर्व अहंकार है और दूसरों के प्रति देश भाव पोषण करता है, ईर्षा भाव पोषण करता है और दूसरों को भिन्न मानता है मुझसे, क्योंकि भगवान सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। और भक्त को सभी प्राणी के हृदय में भगवान को देखना चाहिए कि भगवान सभी के हृदय में है, मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग सभी के हृदय में भगवान विराजमान। इसलिए जो उत्तम कोटि के भक्त होते हैं वो सभी प्राणी के हृदय में भगवान को देखकर सभी को सम्मान प्रदर्शित करते हैं, प्रणाम करते हैं। ये भक्त का भाव है। किंतु जो व्यक्ति दूसरों के प्रति ईर्ष्याभाव प्रकट करता है, इसका अर्थ है कि भगवान उस व्यक्ति के हृदय में विराजमान है, इसको नहीं जानता है या नहीं सोचता, इसलिए ईर्ष्याभाव पोषण करता है। और इस प्रकार भूतेषु बद्ध वैरस्य, जो व्यक्ति का इस प्रकार वैर भाव है, शत्रु का भाव है दूसरे प्राणियों के प्रति, वो व्यक्ति न मन शांति वृच्छति, वो व्यक्ति कभी शांति को जीवन में प्राप्त नहीं हो सकता। और यदि कोई शांति को प्राप्त होना चाहता है तो इससे मुक्त होना चाहिए, वैर भाव से, द्वेष से, ईर्ष्या से उसको मुक्त होना चाहिए, तब जाकर जीवन में वो शांति को प्राप्त हो सकता है। इसलिए माता सुनीति भगवान की आराधना करने के लिए निर्मत्सर होकर भगवान की आराधना करने के लिए ध्रुव महाराज को उपदेश कर रही है। तो कल हम और श्रवण करेंगे, सुनीति और क्या उपदेश दे रही है और क्यों ऐसा उपदेश दे रही है। हरे कृष्ण। तो आज का कार्यक्रम